लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे चीन के कैथलिकों के लिए याचना करते हैं, ताकि कठिनाइयों के बावजूद चीन के लोग सुसमाचार में अपने विश्वास को सुदृढ़ करें तथा एकता में विकसित होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।
नमो यीशुराजन् नमो
श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत पुण्य सप्ताह पर एक लघु चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। चालीसा काल की आध्यात्मिक यात्रा तय कर अब हम पुण्य सप्ताह में पहुंच चुके हैं। पुण्य सप्ताह कैथलिकों के लिए एक महत्वपूर्ण समय है, जब वे यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की विशेष रूप से याद करते हैं। यह यीशु के जीवन के अंतिम समय की यादगारी है। सप्ताह की शुरुआत खजूर रविवार से की जाती है और इसका समापन पास्का पर्व से होता है। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि करीब चौथी शताब्दी से ही इस महान सप्ताह को मनाया जाता है। पुण्य सप्ताह मनाए जाने की शुरुआत आरंभिक कलीसिया के द्वारा यरूशलेम में हुई थी, जब विश्वासियों ने पास्का पर्व के पूर्व यरूशलेम की यात्रा की थी। इजेरिया नामक एक ख्रिस्ते ने 381 से 385 के बीच कई यात्राएं की तथा मिस्र, फिलिस्तीन एवं एशिया माइनर में ख्रिस्ते परंपराओं का वर्णन किया। उन्होंने लिखा है कि ख्रिस्ते किस तरह यरूशलेम की यात्रा कर पुण्य सप्ताह की यादगारी मनाते थे। पुण्य सप्ताह को इस तरह मनाने का उनका उद्देश्य था यीशु ख्रिस्त के दुख भोग को पुनः याद करना, उसे जीना और उसमें सहभागी होना। पुण्य सप्ताह में याद की जाती थी कि यीशु, जो हमारे पापों के कारण मर गए, वे हमें नया जीवन देने के लिए तीसरे दिन फिर जी उठे। अतः पुण्य सप्ताह दुखद होते हुए भी पास्का के आनंद के पूर्वाभास के रूप में मनाया जाता था और ईश्वर की अच्छाई को उनके पुत्र यीशु ख्रिस्त में पहचानने का प्रयास किया जाता था, जो हमारी मुक्ति के लिए मर गए। आज भी ख्रिस्ते इस पुण्य सप्ताह को इसी रूप में मनाते हैं। यह न केवल यीशु के जीवन के अंतिम दिनों की यादगारी है, बल्कि हमारी मुक्ति के लिए पिता ईश्वर के महान प्रेम की भी याद है, जिन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। सप्ताह की शुरुआत खजूर रविवार से की जाती है, जो यीशु ख्रिस्त के एक महाप्रतापी राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश की याद है। यीशु एक दुनियावी राजा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक राजा है, स्वर्ग और पृथ्वी के राजा। उनका राज प्रेम, शांति, दया और क्षमा का राज्य है, जिसको वे पूरी मानव जाति में फैलाना चाहते हैं। इस दिन की धर्म विधि में खजूर की डालियों पर आशीष दी जाती है तथा इसे हाथों में लेकर जुलूस करते हुए चेलों की तरह ख्रिस्त का जय जयकार किया जाता है। पुण्य सप्ताह में पास्का त्रिदियुम को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पास्का पर्व के ठीक तीन दिन पहले अर्थात पुण्य बृहस्पतिवार, पुण्य शुक्रवार और पुण्य शनिवार, ये तीन दिन तीन महान घटनाओं की याद दिलाते हैं। पुण्य बृहस्पतिवार को हम पौत्र यूखरिस्त की स्थापना की याद करते हैं, विश्वासघात किए जाने के पूर्व चेलों के साथ अंतिम ब्यारी के समय येसु ने पौत्री यूखरिस्ट संस्कार की स्थापना की। उन्होंने अपने 12 चेलों के पैर धोए और उन्हें सच्चे प्रेम एवं सच्ची सेवा की शिक्षा दी। इसी दिन विश्व भर के पुरोहित अपना वादा दोहराते हैं। वे इसलिए अपना वादा दोहराते हैं क्योंकि अंतिम ब्यारी में येसु ने न केवल यूखरिस्ट की स्थापना की थी बल्कि पुरोहिताय संस्कार की भी स्थापना की थी। पुण्य शुक्रवार को हमारे मुक्तिदाता येसु ख्रिस्त का मानव जाति के खातिर दुख और अपमान सहकर क्रूस में प्राण त्याग देने की याद की जाती है। इस दिन की धर्म विधि में क्रूस की आराधना, क्रूस का चुंबन तथा पौत्र परम प्रसाद ग्रहण करना प्रमुख है और साथ ही साथ क्रूस रास्ता की भी भक्ति की जाती है। पुण्य शनिवार को येसु के जी उठने की प्रतीक्षा के रूप में व्यतीत किया जाता है। क्रूस में मरने के बाद येसु दफनाए गए और अधोलोक में उतरे और वहां उन्होंने मुर्दों को जीवन दिया। स्वर्ग का द्वार अब तक बंद था और आदि पाप के कारण कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता था। हमारे पापों की कीमत क्रूस पर चुकाकर येसु ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने हमारे लिए अनंत मुक्ति का द्वार खोल दिया। शनिवार शाम को ही पास का जागरण मिस्सा किया जाता है, जब बपतिस्मा संस्कार एवं दृढ़ीकरण संस्कार का नवीनीकरण किया जाता है। हम हर साल इस पर्व को बड़ी भक्ति के साथ मनाते हैं, किंतु इस साल कोरोना वायरस महामारी के कारण इसमें भाग नहीं ले पा रहे हैं। शारीरिक रूप से ना सही पर आध्यात्मिक रूप से चिंतन करते हुए हम इस महान रहस्य में अवश्य भाग ले रहे हैं। 2000 वर्षों पहले येसु ने मानव जाति को जितना अधिक प्यार किया था और उनके लिए अपना प्राण अर्पित किया था, वे आज भी हमें उतना ही प्यार करते हैं, उतनी ही हमारी मुक्ति चाहते हैं। वे आज भी हमारे लिए उतना ही दुख सह रहे हैं, वे हमें बचाना चाहते हैं। आइए हम ईश्वर को उनके इस महान प्रेम के लिए धन्यवाद दें, उनके दुख भोग के रहस्य को गहराई से अनुभव करने का प्रयास करें। हम जितना अधिक पुण्य सप्ताह को पूरे हृदय से मनाएंगे, प्रभु के लिए अधिक समय देंगे और उनके मुक्ति कार्य को समझने का प्रयास करेंगे, उतना ही अधिक अपने जीवन में मुक्ति की कृपा को महसूस करेंगे। हमें अपने जीवन में नयापन का एहसास होगा जो हमें नई आशा के साथ दुखों का सामना करते हुए आगे बढ़ने का बल प्रदान करेगा। अतः आइए हम इस पुण्यकाल में प्रभु के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान पर गहराई से चिंतन करें, ताकि हम उनके अथाह प्रेम का अनुभव करते हुए इस पुण्यकाल की कृपा को अपने जीवन में गहराई से महसूस कर पाएंगे। आप सभी को पुण्य सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं।
चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक मोह की कीमत। लेखिका है भवानी कौल। श्रोताओं, विज्ञान और नए तकनीकी अनुसंधानों के बावजूद एड्स बीमारी हो जाने पर इससे छुटकारा पाने की दुनिया में अभी कोई दवा नहीं बनी है। जो भी दवाएं बनी हैं, वे सिर्फ बीमारी की रफ्तार को कम करती है, खत्म नहीं करती। HIV के लक्षण पाए जाने पर उनका उपचार हो सकता है, ज्यादा देरी होने पर वह भी संभव नहीं रहता। व्यक्ति की मौत के बाद ही इससे छुटकारा मिलता है। असुरक्षित यौन संबंध खून चढ़ाने से या शरीर के अंदर के किसी भी तरल पदार्थ के जरिए HIV का वायरस दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। गर्भवती स्त्री के रक्त से भी या हड्डी में एनेस्थेसिया देते वक्त भी कभी कभी एड्स के मामले प्रकाश में आते हैं। सरकार द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाने के बावजूद बहुधा हमारे समाज में इस बीमारी को छिपाया जाता है। एड्स से ग्रसित व्यक्ति की शादी भी चुपके से करा दी जाती है, परिणाम पूरा परिवार काल के गाल में समा जाता है। आज के नाटक में औलाद के मोह में माता ने अपने बेटे की शादी तो करवा दी, पर बेटे के साथ साथ बहू और फूल सी पोती को भी खो दिया। आइए सुनते हैं भवानी कौल का लिखा नाटक मोह की कीमत।
अरे बहू, अरे वो बहू कस्तूरी, अरे देख तो फिर से रानू को तेज बुखार है।
हाँ मां जी, इसे तो तेज बुखार है।
ऐसा कर, इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं।
ठीक है मां जी।
मैं अभी ऑटो लेकर आता हूँ।
हाँ हाँ जी बाबू जी,
अच्छी तरह जांच करवा कर आना।
हाँ 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 ठीक है, चलो चलो जल्दी करो।
हाँ रानू, जीभ दिखाओ अपनी। हाँ हाँ, और आंखें, नाखून दिखाओ। अब देखिए क्या है, इसके खून की जांच करनी होगी। शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी। रिपोर्ट देखने के बाद ही मैं देख सकूंगा कि क्या है क्या नहीं है। हालांकि मुझे कुछ शंका जरूर है।
शंका? क्या बात है डॉक्टर साहब?
देखो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, आप लोग कल आइएगा।
सुनो जी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, ना जाने हमारी रानू को क्या हो गया है। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है और पता नहीं रिपोर्ट में क्या निकलेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
अरे कुछ नहीं होगा हमारी रानू को, कुछ नहीं होगा। अरे हमने किसी का बुरा नहीं किया, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। जाओ तुम मंदिर होकर आ जाओ, सब अच्छा ही होगा।
तुम कहते हो तो चली जाती हूँ, वरना मेरा तो ईश्वर पर से भरोसा ही उठ गया है। क्या पता भगवान जी क्या करेंगे।
अरे ऐसे मौके पर घबराना या डरना उचित नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हिम्मत से काम लेना पड़ता है, हिम्मत रखो।
ठीक है मैं जाती हूँ। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट में क्या निकला?
बड़े आश्चर्य की बात है कि इतनी छोटी सी बच्ची और एड्स की बीमारी।
क्या एड्स? ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब?
धीरज रखिए, धीरज रखिए।
एड्स?
हाँ 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 हाँ, रिपोर्ट में तो यही निकला है। अब इसका बराबर इलाज करना पड़ेगा। बच्ची को समय पर दवाई और समय पर खाना देना होगा।
जी डॉक्टर साहब, फिर कब आऊं मैं?
देखिए एक हफ्ते पर बच्ची को फिर से लेकर आइए। और हाँ, आपको बहुत हिम्मत से काम लेना होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। देखिए धैर्य रखिए।
जी डॉक्टर साहब।
हाँ, और एक बात बताइए कस्तूरी जी।
जी।
आपके पति क्या करते हैं?
डॉक्टर साहब, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है।
ओह।
वे ट्रक चलाते थे, रानू के पैदा होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई।
किस कारण से?
जी उनकी किडनी फेल हो गई थी।
ये कैसे हो सकता है?
जी ये तो पता नहीं।
ठीक है, आप अपने सास ससुर से पूछिएगा और पति के सारे कागजात हमें जरूर दिखाइए। और हाँ, आप अपने खून की भी जांच करवा लें। आप जाते जाते ब्लड सैंपल दे जाइएगा, उसकी जांच करनी पड़ेगी हमें।
जी ठीक है।
ठीक है।
हाँ बहू, क्या निकला है रिपोर्ट में? क्या कहा डॉक्टर साहब ने?
क्या हुआ?
माँ जी, हमारी रानू को एड्स है।
क्या? ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, तू हमारी परीक्षा बार बार क्यों ले रहा है?
बार बार? बार बार से क्या मतलब बाबूजी?
अरे कहने का मतलब ये है कि भगवान एक ही व्यक्ति को बार बार दुख देता है।
लेकिन रानू को एड्स कैसे हो सकता है माँ जी? डॉक्टर को भी आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने रानू के पापा के सारे कागजात मंगवाए हैं।
बहू तुम्हें तो पता है ना कि किडनी फेल होने की वजह से मेरा बेटा मारा गया। बहुत पीता था वो।
लेकिन आपको उनकी सारी रिपोर्ट्स देनी पड़ेगी माँ जी, और डॉक्टर ने मुझे भी जांच के लिए बोला है क्योंकि वो इसकी तह तक जाना चाहते हैं। आखिर रानू को एड्स कैसे हो गया?
अब ये तो बीमारी है, किसी को भी हो सकती है।
नहीं बाबूजी, ये बीमारी किसी को भी नहीं हो सकती। किसी एड्स वाले व्यक्ति के संपर्क में आने से, खून चढ़ाने आदि से ही होती है। रानू को तो अभी तक किसी का खून भी नहीं चढ़ा, वैसे भी वो तो अभी बच्ची है। फिर
देख बहू, तू हमें और परेशान ना कर। जवान बेटा खोने के बाद हमारी जीने जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन हम जी रहे हैं।
माँ जी, मुझे भी मेरे पति के जाने का गम है, पर मेरी बेटी के बीमार होने का भी दुख है। एक ऐसी बीमारी उसे हो ही नहीं सकती, लेकिन हुई है। आप कुछ छुपा तो नहीं रही ना माँ जी?
अरे बकवास कर रही हो तुम, जले घाव पर नमक छिड़क रही हो तुम बहू।
कुछ भी कहें, पता तो चल ही जाएगा ना माँ जी?
हाँ पता चल जाएगा, देख लेंगे तब। कस्तूरी, पूरी रात हो गई तुम्हें खांसते हुए, क्या तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी?
सच बताइए माँ जी, आपके बेटे की मौत किडनी फेल होने की वजह से हुई थी या कुछ और? क्योंकि डॉक्टर ने मुझे भी HIV पॉजिटिव बताया है।
क्या तुम्हें भी है?
हाँ माँ जी, इसीलिए भगवान के लिए बस सच बताइए आप।
कस्तूरी, मुझसे गलती हो गई। कस्तूरी, असली गुनाहगार मैं ही हूँ। मैंने तुमसे छुपाया कि मेरे बेटे को एड्स है।
क्या?
शादी से पहले ही वह इस बीमारी का शिकार हो चुका था।
शादी से पहले?
हाँ कस्तूरी, मेरा कहना बिल्कुल नहीं सुनता था। गलत संगत में पड़कर उसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया।
लेकिन माँ जी, मुझे या मेरे घर वालों को आपने बताना जरूरी नहीं समझा? दो जिंदगी आपने और बर्बाद कर दी। मैं, आपकी पोती, दोनों ही मौत की कगार पर खड़े हैं। माँ जी, कभी भी कुछ
नहीं। ऐसा मत बोल कस्तूरी, आगे कुछ मत बोल। ये अपराध मुझसे हो गया क्योंकि मैं अपने बेटे के मुंह में अंधी हो चुकी थी। बेटे की शादी कराकर उसका घर बसाना चाहती थी। औलाद का मुंह बहुत खराब होता है कस्तूरी।
कस्तूरी, कस्तूरी, जल्दी आ, देख रानू को क्या हो गया है।
क्या?
उसकी सांस भी बंद हो चुकी है लगता है।
रानू, रानू मेरी बच्ची।
क्या हो गया?
मैंने ही अपनी बच्ची को मार डाला। हो सके तो मुझे माफ कर दे कस्तूरी।
अब क्या, मैं भी बहुत कम दिनों की मेहमान।
कस्तूरी नहीं, कस्तूरी नहीं, तुम्हें जिंदा रहना होगा।
अब किसके लिए जिंदा रहूंगा? सब कुछ तो खत्म हो चुका,
सब कुछ खत्म हो चुका। तुम लोग हौसला रखो, इस तरह हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा।
मोह की कीमत। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटक सुना। इस नाटक के कलाकार थे अमित सिंह, समता भोरीकर, भवानी कोल और संतोष जोशी। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।